जैसा कि साधारण पर लिया जाता है वो नहीं है। योग का विशेष अर्थ है कि इस समय हम लोग अपने को परमात्मा से दूर अनुभव कर रहे हैं। योग मने दोनों का जुट जाना। तो शरणागति की बड़ी भारी विशेषता है कि जिससे आज दूरी मालूम हो रही है उससे वो जुटा देगी। ये विशेषता है। कोई ज्ञान स्वरूप से जुट जाता है और शरणागत भक्त लोग जो होते हैं वो प्रेम स्वरूप से जुट जाते हैं। योग मने जुट जाना, एक हो जाना। भगवत शरण भाई हैं क्या? आपका प्रश्न परसों से ही रखा हुआ है, थोड़ी बातचीत कर ली जाए। बैठो। करना होने में बदल जाए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? करना होने में बदल जाता है किसका? जो अहम शून्य हो जाता है उसका। बहुत सहज बात है कि अपने को अहम शून्य करना है। तो दोषों को जीवन में रखना नहीं है। दोष दिखाई दे तो उनको मिटाते जाओ। और गुणों का अभिमान बनाना नहीं है। गुण दिखाई दे तो स्वामी जी महाराज ने एक बहुत छोटा सा मंत्र सिखाया और कहा कि देखो भाई, मिठास कहीं भी है तो खांड की है। ठीक है ना? गुड़ बना लो, चीनी बना लो, मिश्री बना लो, मिठाई बना लो, शरबत बना लो, कितने विविध रूप में बदल डालो, कहीं भी कोई वस्तु जीभ पर रखने से अगर मीठा स्वाद आता है तो जानने वाले को जानना चाहिए कि ये मिठास गन्ना में से आया है, चाहे कहीं भी और किसी रूप में हो। तो अहम शून्य जिनको होना है उनको अपने में किसी प्रकार का गुण दिखाई दे तो उसको समझना चाहिए कि अनंत गुणवान परमात्मा का ही गुण है, ये मेरा नहीं है। तो गुणों को अगर अपने में आरोप न करो तो गुण का अभिमान नहीं बनेगा। गुणों का सहारा लेकर समाज में सिर ऊंचा करके चलने की कोशिश न करो तो गुणों का अभिमान नहीं बढ़ेगा। भक्ति के आधार पर निर्भय रहो, लेकिन गुणों का अभिमान लेकर अपने को बलिष्ठ अनुभव न करो तो अभिमान नहीं बढ़ेगा। तो जाने हुए दोषों का त्याग करते जाओ और मिले हुए गुणों का सदुपयोग करते हुए भी अपने को गुणवान मानने की भूल न करो तो अहम का नाश होगा। और जिनके अहम का नाश होता है, जिनकी सारी शक्तियां समष्टि शक्ति के साथ जुट जाती हैं, उनका करना होने में बदल जाता है। जो शरीर से वे करते भी हैं तो उनको ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे गंगा बह रही है, जैसे वृक्ष के पत्ते डोल रहे हैं, वैसे ही इस यंत्र में से भी एक प्रकार की ध्वनि निकल रही है। तो ध्वनि के साथ वे जुटे हुए नहीं होते हैं। तो बोलता हुआ शरीर भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मुझ में श्रम हो रहा है। चलता फिरता काम करता हुआ शरीर भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब क्या सारी क्रियाएं मुझ में हो रही हैं, ऐसा उनको नहीं लगता है। तो करना होने में किनका बदलता है? जो दोषों को जीवन में रखते नहीं है, गुणों का अभिमान नहीं करते हैं, कर्तापन अपना नहीं रखते हैं, तो असंग होकर रहते हैं अथवा समर्पित होकर रहते हैं, उनका करना होने में बदल जाता है। तो करना होने में बदले, ये तो आखिरी बात हो गई। प्रारंभिक बात क्या है कि जितना कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। काम करने की क्षमता अपने में है, और उसको बचा करके रखो तो मतलब सिद्ध नहीं होगा, करने का राग नहीं मिटेगा, और करने का राग नहीं मिटेगा तो मरणशील शरीर से छुट्टी पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया बातों को हम लोग सीख लें, और कहते रहने और सुनते रहने का मजा लेते रहें, न कहना खत्म होगा न सुनना खत्म होगा और मतलब सिद्ध नहीं होगा। ये हमारे भाई जो आते हैं प्यारे लाल डागा जी बैठे हैं वहाँ, कितने दिन हो गए उनको स्वामी जी महाराज की संगति में, सेठ जी के संगति में, और हमारे पास भी जब कभी पत्र लिखते हैं आते हैं तो एक बार मैं याद दिलाती हूँ कि बाबा सुनने का काम और कितना दिन बाकी है। तो बेचारे क्या कहें, हंसते रह जाते हैं। तो सुनने की ताकत खत्म हो गई और सुनने का काम बाकी रह गया तो सुनना सफल हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। शक्ति चली गई और जरूरत रह गई तो ये तो बाजी हार जाने के समान हो गया। इस बार का मजा तो गया ही, अब प्रकृति फिर उदारता करेगी, पल पल करके खींचते खींचते ये शरीर खत्म होगा, प्रकृति के विधान में मेरे लिए उसके न्याय में फिर श्रवण शक्ति की देने की बात रह गई होगी तो फिर से शरीर मिलेगा, फिर सुनने की ताकत मिलेगी, और नहीं तो कोई जन्म से ही अंधा बहरा पैदा लेता है तो वो भी एक प्रकार से वो भुगतान ही है और क्या है। तो करना होने में बदल जाए ये उनका होता है जो कि प्राप्त सामर्थ्य का बहुत ठीक ठीक सदुपयोग कर डालते हैं। काम मैंने किया और स्थूल स्तर पर वो सफल दिखाई देता है कि नहीं ये विचार तो दूसरे लोग करेंगे, लेकिन कर्ता को तो अपने किए हुए का फल तत्काल मिल जाएगा। किस रूप में? कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया है और करने का राग खत्म हो गया तो उसका काम तो पूरा हो ही गया, और समाज का काम तो कभी पूरा होता ही नहीं है, सृष्टि का काम तो कभी पूरा होता ही नहीं है। जब से सृष्टि बनी तब से चलने लगी और लगातार चल ही रही है और चलती ही रहेगी। और पिछली दफा स्वामी रामसुरदास जी आए थे हम लोगों के बीच, आमंत्रित किया था हम लोगों ने, स्वामी जी महाराज के प्रेमियों में से हैं, तो जब वे वृंदावन में होते हैं तो स्वतः भी कृपा करते हैं, और समारोह था तो हमने समाचार भी भेजा था कि महाराज आइए हमारे सब साधक लोगों को कुछ कह जाइए। तो उस दिन जब वो भाषण दे रहे थे, श्रम परिश्रम की बात पहले मैंने की थी उसके बाद उन्होंने शुरू किया था, तो उसमें ये कह रहे थे कि जब महाप्रलय हो जाता है, सारी सृष्टि एकदम नाश के उसमें छिप जाती है, तो बहुत दिनों के लिए छिप जाती है, तो मालूम होता है कि सब क्रियाएं बंद हो गई हैं। फिर भी सब क्रियाएं बंद नहीं रहती हैं, क्योंकि हम लोगों को स्थूल दृष्टि से दिखाई देता है कि सब गतिशीलता शांत हो गई, बंद हो गई, सब नाश हो गया, लेकिन उस नाश में और उस निष्क्रियता में भी भीतर भीतर एक क्रिया हो रही है जिसकी पूर्ति हो जाने पर फिर से नई सृष्टि आरंभ हो जाती है। समझ में आता है? तो साइंस में ये इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, हम लोग साइकोलॉजी में इसको इस रूप में इसकी व्याख्या करते थे, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड का ये है कि सब तैयारी आपने कर ली, प्रिपरेशन कर लिया, सब चीज सजा जा करके ठीक ठीक जगह पर जिसको जहाँ रखना चाहिए रख दिया, तो बाहर से अब आपको कुछ करना नहीं है, उसको छेड़ना छाड़ना नहीं है, लेकिन चुपचाप ठीक जगह पर ठीक तरह से रखा हुआ है तो उस रखी हुई हालत में ऊपर से नहीं भीतर से उसमें अपने आप से कुछ क्रियाएं हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, जो कि एक खास समय पर प्रकट हो जाएंगी। तो इस तरह से गति तो नाश हुई नहीं, तो सृष्टि में क्रियाशीलता कभी खत्म होती हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कर्ता जो है वो अगर अपना काम बहुत ही निष्ठा के साथ, सावधानी के साथ, पवित्र भाव से भावित होकर, प्यारे प्रभु की प्रसन्नता का लक्ष्य लेकर, राग निवृत्ति का लक्ष्य लेकर कर डालता है, तो उस कर्ता का काम पूरा हो जाता है। उसका राग खत्म हो गया तो काम पूरा हो गया। और बाकी सृष्टि का क्या होगा, तो मैं कहती हूँ कि पहले बीत राग होके तो देखो, पीछे चिंता करना, सृष्टि का मालिक तो परमात्मा है ही, अकेले काफी है वो चिंता करने के लिए। जिसने सृष्टि बनाई है वो अपना सोच लेगा कि कैसे करें, कैसे करना है, कैसे संभालना है, सो चिंता हम क्यों ले। अपने को पहले हम लोग भीतराग बनाए तो सही, काम करने का जो अवसर मिला है उसको इतनी सावधानी से काम में लिया जाए कि करने की शक्ति के रहते रहते करने का राग खत्म हो जाए। तो जिनके करने का राग समाप्त हो जाता है उनका करना होने में बदल जाता है। जो सर्व समर्थ प्रभु के हो जाते हैं, अपना कर्तापन नहीं रखते हैं, उनका करना भी होने में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि वे स्वयं तो अपने प्यारे के प्रेम में छके रहते हैं और भगवत कृपा से, उनके करुणामय, उनके मंगलमय विधान से शरीर यंत्रवत काम करता रहता है, चलता रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती। उसी तरह से शरीरों से असंग पुरुष जो होते हैं वे अपनी असंगता में आप प्रतिष्ठित रहते हैं और शरीर यंत्रवत काम करता रहता है। तो करना होने में बदल जाए ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऊंची बात है। अब भाई मेरा पूछ रहा है कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो करना होने में बदल जाए इसके लिए अपने को जो भी काम सामने मिला है उसको बड़ी सावधानी से कर डालना चाहिए। ये बिल्कुल प्रारंभ की बात हो गई। और आपको कैसे मालूम होगा कि करना होने में बदल गया, तो उसका अर्थ ये है कि अपने पर आपको कोई स्ट्रेन नहीं मालूम होगा, श्रम नहीं मालूम होगा, थकान नहीं मालूम होगा, सफलता विफलता का प्रभाव नहीं मालूम होगा, कुछ नहीं। जैसे करते समय आप असंग हैं, ऐसे ही उसके अशुभ अशुभ फलाफल में भी प्रसन्न है, शांत है, स्थिर है, अपने पर कोई उसका असर नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो कर्म क्षेत्र की पहली बात ये है कि जितनी क्षमता है अपने में उसको खर्च करने में चूके नहीं। खर्च करें तो सर्वहितकारी भाव से करें, और छोटा से छोटा काम जो हाथ में लें तो पूरी विधि से उसको ठीक करें, और करने के साथ साथ राग निवृत्ति पर दृष्टि रखें, किए हुए कर्म की फलाशक्ति अपने में न रखें। ऐसा हो नहीं चाहिए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और होता हुआ नहीं दिखता है तो सत्य पर से हट जाओ, थोड़ा बहुत असत्य का मिश्रण कर लो, सहारा ले लो कि किसी तरह से काम तो पूरा हो। तो काम पूरा होने पर दृष्टि चली गई और सत्य पर से दृष्टि हट गई तो काम बहुत बढ़ गया, हुआ कुछ नहीं। एक जगह एक पंडित जी कथा कह रहे थे तो बहुत दूर आ रहे थे बारंबार कि अरे भाई, जैसे आटा में नमक डाला जाता है तो इतना सा आटा होगा तो इतना सा उसमें नमक डालेंगे, तो ऐसे ही जरूरत पड़ने से सत्य के बीच में इतना सा असत्य मिला सकते हैं। तो इस बात को बार बार दोहरा रहे थे तो हमको इतना बुरा लग रहा था। हमने कहा कि आटा में नमक मिलाने में और सत्य में असत्य मिलाने के समझौता में कोई तुलना है क्या? हमको तो बड़ा अजीब लग रहा था। हमने कहा कि लोग तो ऐसे ही घबराए हुए रहते हैं, सामने जो काम उनके आ गया उस काम को सफलतापूर्वक देखने का और समाज में सफलतापूर्वक दिखलाने का राग इतना अधिक होता है कि आदमी ऐसे ही ढुलमुल ढुलमुल करता रहता है। अरे भाई जाने दो, अभी इतनी सी झूठ तो बनानी ही पड़ेगी, अब जाने दो इतनी सी बात बदल के कहने में क्या है,
तो कहीं डालो,
तो आदमी तो ऐसे ही दुर्बलता में फंसा रहता है। और वो पंडित जी कथा कह रहे थे और बारम्बार सुनाते जा रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि पंडित जी ऐसा जरूर करते होंगे, ये खुद ही इनके भीतर अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है कि सत्य में असत्य मिलाए बिना काम चल सकता है, इसलिए बार बार उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो देखने में तो लगता है कि भाई व्यवहार कुशलता का ये भी एक ढंग है कि अब जरूरत पड़ गई तो थोड़ा उसमें असत्य भी मिला दो, लेकिन आप देखिए कि काम सफल हो गया कि आपका सारी आपकी सारी साधना ही विफल हो गई, कैसा लगता है? हैं? साधना विफल हो गई ना, तो कौन सा काम निकला भाई? अगर हम ये कहें कि काम चलता नहीं है, वो बोध गया में समन्वय आश्रम में, विनोबा जी का बनाया हुआ समन्वय आश्रम है बोध गया में, बुद्ध भगवान का स्थान जो है उसके पास ही वो आश्रम बना हुआ है। तो वहां पर 1969 में वो मीटिंग ऑफ माइंड्स आर आर दिवाकर जी ने बुलाया था, स्वामी जी महाराज गए थे, हम लोग सब लोग गए थे, बहुत से साधु संतों को बुलाया था उन्होंने ये कहने के लिए कि भाई अब देश का कल्याण कैसे हो, राजनीतिज्ञों को नेताओं को क्या क्या करना चाहिए। बहुत से संत आए थे और बहुत से संत नहीं आए थे, तो जो लोग नहीं आए थे उन्होंने अपना अपना संवाद और विचार लिख के भेज दिया था। तो स्वामी चिन्मयानंद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के सेक्रेटरी आजकल है, शिवानंद जी महाराज के शिष्य है। तो स्वामी नहीं सेक्रेटरी वो नहीं है, चिदानंद जी सेक्रेटरी है, वो चिन्मयानंद है तो वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के, लेकिन वो अलग अपना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं चिन्मयानंद। तो चिन्मयानंद जी ने अपना लिख के भेज दिया था, तो उन्होंने लिख के भेजा था कि तुम लोगों ने मीटिंग बुलाई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत से संत महात्मा आए होंगे, बातचीत कर लो, सलाह ले लो, लेकिन मैं तो राजनैतिक लोगों को और राजनीति की दृष्टि से देश को संभालने की बात तो कौन कहे, मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि साधकों के लिए जो जगह जगह आश्रम बने हैं उन आश्रमों को भी शुद्धता से चलाने में मुझको कठिनाई हो रही है। ये उन्होंने लिख करके भेजा था, मैंने सुना था, उनका पत्र पढ़ करके सुनाया गया था। तो कठिनाई हो रही है, ठीक है, अब कठिनाई को हल कीजिएगा कि अपनी साधना कीजिएगा। अच्छा, अब कठिनाई को हल करने के लिए आटा में नमक डाल देना स्वाभाविक आपने मान लिया, तो करने का राग अगर मिटा नहीं, राग मिटाने की साधना नहीं बन पाई आपकी सेवा, तो आश्रम का अर्थ क्या हुआ, सेवा का अर्थ क्या हुआ, साधना का अर्थ क्या हुआ? तो ऐसे तो सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, निर्वाह तो कर ही रहे हैं, हो ही रहा है, और जो लोग अपने को साधक नहीं कहते हैं और जो लोग आश्रमों में नहीं रहते हैं वे सब लोग मिथ्यावादी होते हैं क्या? जी सब नहीं होते, सर्वांश में मिथ्यावादी होते हैं नहीं होते, साधकों की सूची में नाम लिखाए बिना और आश्रमों में बात किए बिना निज विवेक का आदर करने वाला आदमी समाज में होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है ना? तो निज विवेक के आदर की महिमा है और निज विवेक के आदर में हम लोग अधिक अधिक बलिष्ठ हो जाएं, इसी के लिए सारा इंतजाम है। तो निज विवेक के आदर पर ही पर्दा डाल दिया तो कौन सा काम निकला भाई? करने का राग समाप्त नहीं हुआ तो दुनिया का कौन सा कल्याण किया मैंने? तो करने का राग जो है, जैसा स्वामी जी महाराज ने खोज किया है और जैसे स्पष्ट शब्दों में कहा है, वैसा और किसी के ध्यान में आया है कि नहीं? मुझे तो शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ही विलक्षण बात सुनने में आई। कि एक गिलास जल अगर ठीक तरह से नहीं पिला सकोगे तो तुम ध्यान नहीं कर सकोगे। और लोग जब ध्यान वान में जप जुप में लगने लग जाते हैं तो कहते हैं कि अब मेरा घर के काम में मन नहीं लगता, तो मुझको लगता है कि कहीं खटका है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अध्यात्म जीवन में कर्तव्य में न निरस्ता आती है, न कर्तव्य से जी उगता है, न कर्तव्य से आदमी हटता है, ये है उसकी खास बात। तो प्रारंभिक दिन जो है हमारे, जैसे हम लोगों ने अपनी साधना आरंभ की है, तो उस प्रारंभिक दिन में क्या करने से मेरा करना होने में बदल जाएगा, इस पर ध्यान देना हो तो यहीं से आरंभ करो। जितनी सामर्थ्य है उसको खर्च कर डालना जरूरी है, रखना नहीं चाहिए, जी चुराना नहीं चाहिए किसी प्रकार से। और दूसरी बात यह है कि सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि राग निवृत्ति के लक्ष्य को सामने लेकर करना चाहिए, और कोई लक्ष्य जीवन में रखना नहीं चाहिए। तो लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, जीवन की मांग पूरी हो जाए, दुख निवृत्ति, चित शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति, जो भी आपको अच्छा लगे वो एक ही में सब शामिल है, हो जाए, इसी पर दृष्टि रख करके हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो आगे चलकर करना होने में बदल सकता है। और प्रारंभिक कदम में गलती होती रहेगी तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रेमी जनों का करना भी होने में बदलता है, क्योंकि वे भी बिल्कुल अहम शून्य होते हैं। और जो लोग अहम शून्य होते हैं, जिनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये काम मेरे करने से हुआ, ऐसा कभी नहीं लगता, सारी शक्ति मेरे कर्ता की है, मेरे परमात्मा की है, मेरे भगवान की है, मेरे प्यारे प्रभु की है, ऐसा वे मानते हैं, तो प्रभु की शक्ति से प्रभु का काम हो रहा है, इस बात का पूरा पक्का इत्मीनान जिसको है उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं आता है। और अभिमान नहीं आता है तो उसका भार भी उन पर नहीं पड़ता है, स्ट्रेन भी उन पर नहीं लगता है, उसमें किसी प्रकार का विकार भी शामिल नहीं होता है और करना होने में बदल जाता है। स्वामी जी महाराज के अपने जीवन का अनुभव है, उन्होंने बताया था हम लोगों को, मुझबानी बातचीत करते करते कहा था, और वो टेप में भी है, इंट्रोडक्शन में, और जगह जगह साहित्य में भी है। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा करते समय जब खूब पिकेटिंग कर रहे हैं और जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और पुलिस की लाठियां खाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे हैं, उत्साहित बहुत हुए थे और खूब अपने सिर पर यूं हाथ फेरते कहते कि ये गंजा गंजा सिर, बाल तो कटा हुआ होता था, नई उम्र थी तो ये चंडूल नहीं हुआ था, बाल कटे हुए थे, पूरा चिकना घुटा हुआ, तो कहते कि बड़ा शौक लगता कि देखी जी इस पर पुलिस की लाठियां पड़ेंगी, बड़ा मजा आएगा, लेकिन किसी पुलिस की लाठी उस पर पड़ी नहीं, ये भी बताते थे। तो पड़ती कैसे, वो तो भगवत अनुराग से भरा हुआ जीवन था, उसकी रक्षा करने वाले सब साथ रहते थे, तो उतना कष्ट देना उन्होंने पसंद नहीं किया होगा, तो लाठी पड़ी नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे कोई भी मामूली आदमी एक एक शुभ प्रेरक से प्रेरित होकर के काम जैसे करता है, एकदम तन्मय होकर के, उसी तरह से स्वामी जी महाराज कर रहे थे, व्याख्यान देना और पिकेटिंग करना और नारे लगाना, और जिला जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट की हैसियत से सब काम करना, तो ऐसे तन्मय होकर कर रहे थे जैसे कि कोई भी व्यक्ति करेगा। और संत ने जब पूछा तो उन्होंने बिल्कुल निर्भीक होकर के बिल्कुल मुक्त कंठ से घोषित कर दिया कि मैं त्रिकाल में भी कुछ भी करता कराता नहीं हूँ, मैं सदैव अपनी अखंडता में स्थित हूँ। तो करना होने में बदल गया था ना, वो कुछ नहीं कर रहे थे, हमको अपने कुछ करना ही नहीं था। व्याख्यान देते समय आप लोगों ने सुना होगा, बातचीत करते करते कभी कभी कह देते कि अरे भाई जैसे तुम सुनते हो वैसे मैं भी सुनता हूँ, ये भी कहा। कभी कोई बीच में से पूछे कि महाराज ये तो ऐसी बात आपने कही थी, कैसे कहा था, क्या था? अरे भाई वो तो निकल गया सो निकल गया। फिर कहते कि जैसे तुम सुनते हो वैसे मैं भी सुनता हूँ, मैं भी तो श्रोता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि उनका बोलना न बोलने के समान था। जिस समय वे बोल रहे थे हम लोगों के देखने में वे वक्ता थे, उस समय वे सब प्रकार से शांत श्रोता थे। तो ऐसा अहम शून्य व्यक्तित्व होता है कि कार्य करते हुए भी उसको ये फील नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ आनंद से। और कभी कभी हम लोग जो टेप कर लेते कहीं भी, वृंदावन में भी बहुत बार हुआ, दूसरी जगह भी, तो सुन लेते स्वामी जी महाराज थोड़ी दूर पर कहीं बजा करके, उसको हम देखते होते कि देखें कैसा ठीक आया है कि नहीं आया है, और अपना ही कोई कोई सेंटेंस उसके उनके कान में पड़ जाए और सुन ले तो खूब ताली बजाते, खूब हंसते कहते वाह बाबा जी आपके बड़े ठाट हैं, वाह बाबा जी, ऐसा जैसे कि दूसरा कोई दूसरे पर रिमार्क दे ऐसे कह देते। तो इसका अर्थ ये है कि सब कुछ करते हुए भी न करने का जीवन उनको प्राप्त था। ये असंभव नहीं है, ये कल्पना नहीं है, अनहोनी बात नहीं है, होती है। अनेकों संत अभी भी ऐसे हैं कि सब कुछ करते हुए भी न कुछ करने के समान बिल्कुल शांत निश्चिंत निर्भय निर्द्वंद, जिनके भीतर किसी प्रकार का संक्षोभ ही पैदा न होता हो ऐसे होके रहते हैं। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए अपने लोगों को क्या करना चाहिए, तो यहीं से आरंभ करना चाहिए। जहां भी कहीं अपने में सामर्थ्य मालूम हो और करने का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए, जरूर खर्च करना चाहिए शक्ति को, और प्रेम पूर्वक करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, सद्भाव पूर्वक करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को सामने लेकर के करना चाहिए, और किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के काम करने में गलत सलत सत्य मिथ्या का मिश्रण नहीं करना चाहिए। हो गया भगत सिंह भाई? प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करने से करने का राग मिटेगा, और शक्ति मेरी है और मैंने किया, और मैंने विशेष किया दूसरे लोगों ने नहीं किया, और मेरी कृति का रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो अगर अगर ये रहेगा भीतर कि मैंने जो किया वो समाज की दृष्टि में आनी चाहिए कि मैंने किया, जब जब समाज रिकॉग्नाइज करेगा, इतनी अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं, हाँ, तो समाज रिकॉग्नाइज करेगा तो उसका फल क्या होगा कि हमको इच्छित वस्तु सुविधा सम्मान मिल जाएगा। तो इसलिए जो अपने को बहुत ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले लोग समझते हैं, तो वे लोग ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो श्रम भी लग जाए, समय भी लग जाए, योग्यता भी लग जाए, और लोगों की नजर में भी ना आवे और अपने लिए कोई फलदायक भी न हो, तो ऐसे काम में हाथ नहीं डालते हैं। ऐसे काम में हाथ डालते हैं कि काम अगर करें तो लोगों की नजर में आवे कि हाँ इन्होंने इतना किया, और फिर उसका परिणाम बनेगा, प्रतिफल मिलेगा, उसका भोग करेंगे। तो अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति है तब तो राग मिटने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो राग नहीं मिटेगा। लेकिन जिसको राग से मुक्त होना है उसको तो इन बातों पर ध्यान नहीं देना होगा, उसे शक्ति का सदुपयोग करना होगा, और करते हुए भी राग रहित होके रहना पड़ेगा। हाँ
हाँ
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसके संबंध में मेरी एक सलाह है आपके लिए, सब लोग अपने लिए मत लगाना, व्यक्ति व्यक्ति का, साधक साधक का जो जो वर्तमान हाल है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो ये जो भाई हैं मेरे भगवत शरण जी, बहुत ही ईमानदार सच्चे आदमी हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से कुछ मानसिक कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं इनकी दशा के अनुसार उत्तर दे रही हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि आप बिल्कुल सहज भाव से देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है और उसको कर डालो, और उसके बाद फिर उसकी छानबीन मत करना। अम्बर उसमें उसमें गहराई में उतरना ही नहीं, क्योंकि मानसिक कमजोरी के कारण जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि की ताकत घट जाती है ना, तो वो फैसला पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसको सोचेंगे तो इसमें भी उनको लगेगा कि इसमें अमुक अमुक कमी है, गलती है। दूसरा अल्टरनेटिव लेंगे तो उसमें भी लगेगा कि कहीं गलती ना हो जाए। फिर तीसरी बात लेंगे तो उसमें भी लगेगा कि कहीं कमी ना रह जाए। तो मानसिक दुर्बलता को ऐसा मान लीजिए कि जैसे अपने पास एक यंत्र है काम करने का और वो कुछ बिगड़ गया है, तो जितना वो कर सकता है उतना काम उससे ले लो। बहुत ज्यादा उसके भीतर प्रवेश करने से तो फिर आप तकलीफ में पड़ जाते हैं, फिर द्वंद की दशा पैदा हो जाती है। इसलिए कभी मत सोचना, तुम ईमानदार आदमी हो, तुम जो सोचोगे जो करोगे वो किसी के लिए हानिकारक हो ही नहीं सकता, और आज तक हुआ भी नहीं। आपका कोई काम किसी के लिए हानिकारक नहीं है, बस इतने से संतुष्ट रहना, गहराई में मत जाना। और नाम रखा है स्वामी जी महाराज ने भगवत शरण, ठीक है ना। तो जो आप नहीं कर सकते हैं उसकी जिम्मेदारी अपने शरण्य पर डाल करके बिल्कुल निश्चिंत रहो, तो मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। जी
तो ये ना हो कहीं कि फिर वो अपने को इसी से तृप्त कर ले कि मैं तो दिन भर काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कर रहा हूँ। गतिशीलता गतिशीलता इसलिए मुझे काम करना है, मेरी शक्ति जो है इसका मुझे उपयोग करना है। ये व्यक्ति जो है
दीदी, आपको भी इस मामले में बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। मत सोचिए कि क्या जाने मुझसे इस प्रकार का भ्रम हो जाए, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो अखंड रूप से गतिशील रहे, इतना भी कर्मठ व्यक्ति होगा। क्यों? इसलिए कि गतिशीलता में, गतिशीलता के मूल में शांति रहती है, तो शांति में से गति उत्पन्न हुई और शांति में जाकर विलीन हुई तो काम हो गया। तो जहाँ वो जाकर के विलीन होगी वहाँ शांति संपादन में, साधना में हम लोग लग जाते हैं। सवेरे उठकर मुख सत्संग करो, दोपहर के समय भोजन के बाद विश्राम के समय विश्राम में रहो, रात्रि में सोने से पहले मुख सत्संग में रहो, जितनी बार जिसको मौका मिले। समर्पण भाव है तो समर्पण योग में रहो, और विचारक हो तो मुख सत्संग में रहो, तो वो भूल जो आप बता रही हैं वो नहीं होगी, साधकों से नहीं। और यंग एज में, नई उम्र जब होती है, जब क्रिया का वेग ज्यादा रहता है, तो आदमी ज्यादा खर्च कर लेता है, करना पसंद करता है, और होना भी चाहिए। लेकिन अब आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से अदम्य शक्ति तो है ही नहीं है, जितनी है उतने के सदुपयोग करने की बात है। तो अधिक से अधिक विश्राम का संपादन आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक पड़ेगा। और अगर मन की चंचलता नहीं रुकती है, शरीर शिथिल हो गया, ऐसा भी तो होता है ना, काम करते करते शरीर तो थक गया और मन की चंचलता रुक ही नहीं रही है, तो नहीं रुक रही है तो उसका उपाय ये नहीं है कि उठ करके कुछ करने लग जाएं। अगर समर्पण भाव की साधना है तो समर्थ प्रभु से समर्पित करके और छोड़ दो। थोड़ी देर तक उसमें हलचल मचेगी, थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें आएंगी, फिर धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो अपने निर्णय में संदेह कभी नहीं करना, किसी को नहीं करना चाहिए। तो अपना कल्याण मुझको अभिष्ट है, इसलिए निर्णय गलत हो नहीं सकता। दूसरों का, निकटवर्ती जन समाज का हित मुझको अभिष्ट है, इसलिए निर्णय में गलती नहीं हो सकती। अब रही बात लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की, और हमारी तरह जिसको प्रैक्टिकल एबिलिटी कम हो, तो इस प्रकार की कमी में भी मैंने अनेक अवसरों पर देखा है कि जो बात मेरी समझ बूझ से मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात थी, लेकिन भीतर में भाव की शुद्धि होने से कोई करने वाला उसको ठीक ठाक कर देता है। जब हो जाता है तो मुझको दिखाई देता है कि मैं तो इतना सोच ही नहीं सकती थी, मैं तो इतना समझ ही नहीं सकती थी, मेरे बस की तो बात ही नहीं थी, किसने संभाल दिया। वो अपना तो एक ही है भाई, दो चार है नहीं जो छानबीन करें पता लगाए कि किसने किया। दो चार हो तो पूछ पाछ के पता लगाएं कि ये काम किसने किया, वो तो एक ही है, तो पूछने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। इसलिए बिल्कुल निर्द्वंद हो जाइए। सब समय हाई काम हाई काम हाई काम, वो भी अच्छी बात नहीं। असल समय कोई कर नहीं सकता है, केवल करने के राग से धुन में फंसा रहता है, करता कहां है। तो भ्रम नहीं रहेगा, भ्रम का निवारण हो जाए, बहुत सहज से हो जाए। अरे तो कहने से होगा, कर्तापन का अभिमान मिटा नहीं हो रहा है, कहने से हो जाएगा। कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, लक्ष्य को ऐसा रखो और फिर अनासक्त बनो, बीजराग बनो, समर्पित हो। जब हो जाएगा तो हो जाएगा। जब लगता है कि मैं कर रहा हूँ तब तो सावधान रहना चाहिए ना। ऐसे तो वेदांत दर्शन के आधार पर मैं ब्रह्म हूँ, तो एक वेदांती सज्जन मुझसे कहने लगे कि बहन जी, अगर जैसे जैसे लोग इन सब बातों को कहते हैं वैसे उनकी बातों को मान लीजिए, तो उनसे ही उनके मुख से कहलवा दीजिए कि दुनिया में बहुत से ब्रह्म हैं। तो भाई सूत्र के वाक्य जो होते हैं, सत्य क्या निर्देश संकेत, वह तो आदर्श है ना। वहाँ तक चलने की निष्ठा में आज जो अपनी दशा है उसको देख देख के चलना पड़ेगा। वो दिल्ली में हाईकोर्ट के जज थे, एक दो बार हम लोगों के पास भी आए थे, विपिन चंद्र मिश्रा करपात्री जी से उन्होंने संन्यास लिया है, बड़ा कठोर संन्यास, दंडी स्वामी हो गए हैं, दो ही साल हुए हैं बने। तो जगह जगह पर मुझसे उनकी भेंट होती रहती थी। रामतीर्थ आश्रम में देहरादून में हम लोग थे तो वहाँ मिले थे, दिल्ली में आए थे, दिल्ली से यहाँ आए थे, वृंदावन में सिन्हा बाबू जी ले आए थे। सिन्हा बाबू जी ने बहुत चेष्टा की कि मानव सेवा संघ से इनकी तृप्ति हो जाए, तो दो चार बार उनको ले आए, रखे हम लोगों के यहाँ, भाषण भी दिलवाया, बात भी करवाया, लेकिन जिसकी जैसी बनावट होती है तो उनको वही सब पसंद था। बहुत दिनों तक एकांत में अनुष्ठान किया उन्होंने और उसके बाद करपात्री जी से संन्यास लिया, तो वही उनको बता रहे थे कि अगर इसी तरह से हर आदमी कहने लग जाए कि मैं ब्रह्म हूँ इस दशा में, तो फिर वो तो यही कहेगा कि तो दुनिया में बहुत से ब्रह्म हैं। तो करना होने तक जाए ये बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अहम शून्य होके देखो तब ना पता चले, और नहीं तो उल्टा सीधा काम करो और कहो कि हो रहा है। दाल पकाते समय नमक की जगह पर चीनी डाल दो और कह दो कि मैं कर नहीं रही हूँ, हो रहा है। ये कोई साधन की बात थोड़े है, नकल करने से नहीं बनता, महावाक्यों को दोहराने से नहीं बनता, साधना करते 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 वहाँ पहुँचो तो काम बनता है। तो भगवत शरण भाई ने तो ये पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रश्न कितना अच्छा है, बेचारे दूसरों पर नहीं ले जा रहे हैं, जनरलाइज करके नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने उनको बता दिया। देवी माताओं बहनों और भाइयों, प्रभु की अहित की कृपा से मानव जीवन मिला और उन्हीं का दिया हुआ यह अवसर है कि हम सब लोगों को जीवन के सत्य पर विचार करने का अवसर मिला। इस समारोह की यह आखिरी बैठक है। तो समारोह की आखिरी बैठक है, परंतु हमारे जीवन में सत्संग की जो अखंडता है, कि सब समय हम लोगों को सत्संग के प्रकाश में ही चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि यह जीवन पूर्ण न हो जाए। तो इस दृष्टि से एक सप्ताह के भीतर जो भी कुछ जीवन का सत्य हम लोगों के सामने आया, जिस पर हम लोगों ने विचार किया, उसमें से कुछ खास चुनी हुई बातों को फिर से दोहरा लेना चाहिए, इसलिए कि उन पर हम संपूर्ण जीवन में प्रयोग करते रहें। तो संघ के प्रणेता संत ने एक बहुत क्रांतिकारी बात हम लोगों के सामने यह रखी कि जीवन के पूर्ण विकास के लिए श्रम की ओर से विश्राम की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में शरीरों का निर्वाह करने के लिए अनेक प्रकार के श्रम हम कर रहे थे, अब शरीरों से अतीत अविनाशी जीवन से मिलने के लिए भी कुछ कुछ श्रम करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई श्रम तुम्हारे पास है, श्रम करने की सामर्थ्य है, तो सेवा करो, खर्च करो उसे, अन्यथा जो तुम्हें शांति संपादन का समय मिले तो श्रम रहित होकर अविनाशी जीवन की ओर आगे बढ़ो। तो श्रम होता है शरीरों के लिए, श्रम होता है शरीर और संसार के सहयोग से, श्रम होता है शरीर और संसार को सहयोग देने के लिए, और साधक की दृष्टि में श्रम किस लिए? अब तक जितनी बातें निवेदन किया मैंने वो तो सबके लिए समान रूप से सत्य है, और साधक की दृष्टि किस बात पर रहनी चाहिए कि श्रम करते हैं हम विश्राम पाने के लिए। तो ऐसा श्रम करना चाहिए और इस ढंग से करना चाहिए कि श्रम के अंत में मुझे सहज भाव से बिना किसी विधि विधान के स्वाभाविक रूप में विश्राम मिले। तो एक वाक्य अगर सामने रखा जाए तो क्या कहेंगे हम कि श्रम करना है विश्राम पाने के लिए। एक बात ये विशेष बताई स्वामी जी महाराज ने, दूसरी बात यह बताई कि भौतिक जगत के कल्याण में और व्यक्ति के कल्याण में अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग संसार की सेवा में लग जाते हैं वे आध्यात्मिक विकास से वंचित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, और जो लोग आध्यात्मिक विकास में लग जाते हैं वे संसार के काम नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति और समूह में अविच्छिन्न संबंध बताया महाराज जी ने, इसलिए उन्होंने जगत की सेवा और शांति की अभिव्यक्ति, जगत की सेवा और भगवत भक्ति दोनों को परस्पर विरोधी नहीं बताया, इसलिए कि सेवा करने की सामर्थ्य, सत्य पर विचार करने की सामर्थ्य और सर्वस्व समर्पण करने की सामर्थ्य एक ही व्यक्तित्व में होती है, इसलिए उन्होंने तीनों में योग बताया कि जो भगवत समर्पित हो करके जीवन पाना पसंद करेगा, अर्थात उस अनंत परमात्मा से सदा सदा के लिए अभिन्न होना पसंद करेगा, उसको त्याग से भी काम लेना पड़ेगा और सेवा से भी काम लेना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर से अभिन्न होने के लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं है, अहम का परिवर्तन अपेक्षित है। अब तक हम जी रहे थे सुख भोग के लिए, अब इसी क्षण से इसी वर्तमान में मैंने निश्चय किया है कि अब हम जिएंगे प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनके प्रेम के लिए। तो एक जीना है सुख भोग के लिए और एक जीना है परमात्मा के प्रेम के लिए। तो यह परिवर्तन कि अब मैंने आज से इसी क्षण से सुख भोग को इनकार किया और परमात्मा के प्रेम के लिए जीना पसंद किया, इसमें कोई श्रम की बात नहीं है। इसको महाराज जी ने स्वधर्म बताया कि अपने द्वारा व्यक्ति यह निश्चय लेता है और उसके निश्चय के साथ ही उसका अहम परिवर्तित हो जाता है और अहम परिवर्तन के साथ ही मन चित्त बुद्धि इंद्रियां सब में अपने आप से परिवर्तन होने लगता है। ये एक खास बात है अहम के परिवर्तन की बात, जिसको स्वामी जी महाराज ने इतना स्पष्ट करके और बिल्कुल एसेंशियल पॉइंट के रूप में कि साधक के लिए ये होना अनिवार्य है। अगर उसने अपने अहम को नहीं बदला, अपने लक्ष्य को नहीं बदला, जीवन के अर्थ को नहीं बदला, तो किसी विधि विधान से भगवत भक्ति उसमें उपजेगी ये संभव नहीं। तो एक जो प्रचलित कायदा है, जगह जगह मैंने देखा है, किसी किसी बात के लिए तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी देख देख करके, और कभी कभी हंसी भी आती थी। लेकिन मैंने देखा है कि अहम के परिवर्तन के लिए असत्य की अस्वीकृति और सत्य की स्वीकृति को प्रधानता नहीं देने से साधकों में एक बड़ा भारी भ्रम पैदा हो जाता है। और वो क्या होता है कि वे प्रारंभ ही कर लेते हैं नाम जप से, भजन से, कीर्तन से, पाठ से, नित्य नियम से। तो मैंने पुरुषों के बारे में तो उतना नजदीक से हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक जगह पर जहाँ पर बहुत से साधक ही लोग रहते हैं, महिलाओं की मंडली में मैंने देखा था, नई नई उम्र की लड़कियाँ, 20 बरस की, 22 बरस की, 25 बरस की, 28 बरस की बहुत लड़कियाँ थीं, कम से कम 25 तो होंगी, पूरी गिनती मुझे मालूम नहीं है। तो उन लोगों के साधन का ढंग ऐसा था कि सवेरे से उनका बड़ा कठिन नियम बना हुआ था कि इतने घंटे आपको इस तरह से बिताना है, इतने घंटे इस तरह से बिताना है, इतने घंटे नाम जप करना है। तो भाई अब सबकी रुचि अलग, सबकी शारीरिक दशा अलग। तो 25 में से कुछ लोग तो ऐसी थी कि जिनका सहज से ये सब नित्य नियम पूरा हो जाता था 11-12 बजे तक, और कुछ की शारीरिक दशा अच्छी नहीं रही होगी, तो किसी को आलस आती, जमघाई आती, किसी के पांव दुखते, किसी की पीठ दुखती, किसी के सिर में दर्द होता, तो उसका पूरा ही नहीं होता। मानसिक दशा भी सबकी अलग अलग, कोई कोई मेंटली कुछ ज्यादा बैलेंस है तो वो नित्य नियम अपना ठीक तरह से पूरा कर लेता है, किसी के मन में बहुत सी अतिरिक्त इच्छाएं परेशान कर रही हैं, तो उसका कंसंट्रेशन होता ही नहीं है, ध्यान लगता ही नहीं है किसी बात में, बड़ी परेशानी से वो पाठ पूरा करे। तो शाम के समय 4 बजे जब आपस में एक दूसरे की बातचीत होती तो सब रिमार्क्स मुझे सुनने को मिलते, एक दूसरे से कंपटीशन हो जाता, एक दूसरे के प्रति ऊंचा नीचा भाव हो जाता,
तो जिनसे सहज से हो जाता वो लोग समझते कि हम अच्छे साधक हैं, जिनको कठिनाई होती उनको एक हीन भावना आती। तो इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कंपटीशन और उसमें भी अच्छा बन गया साधन तो उसका अभिमान नहीं बन रहा है, तो एक अजीब तरह की क्षोभ की दशा तो देख देख करके मेरे भीतर इतना दुख होता। मैं सोचती कि देखो आदमी चला है साधन करने भगवान के नाम पर, तो वहाँ भी कितना असाधन का सृजन हो रहा है। तो जिन लड़कियों से होता नहीं था उनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति भी रहती थी। अब क्या करें, हेल्थ अच्छा नहीं है, बैठा नहीं जाता है, पीठ दुख गई, घुटने दुख गए, मन में अनेक प्रकार की अशांति है, कितनी दमित इच्छाएं, विविध परिस्थितियां होती हैं। तो जो लोग इतने समर्थ होते हैं कि सत्य के प्रकाश में इच्छाओं की आपूर्ति को गिनते ही नहीं है, ये है तो है, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, अडाउ सबको। तो इतने जो भीतर से सामर्थ्यवान हैं, जिनका चित्त अपेक्षाकृत शुद्ध है, जिनके भीतर की वासनाएं उतनी प्रबल नहीं है, तो उनके लिए सहज हो जाता है प्रतिकूलता के साथ एडजस्ट करना। और जिनके भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है अथवा जिनको बहुत अनुकूलता मिली है, मन में जो आया सो बात पूरी हो गई, माता पिता ने कर दिया कि सास ससुर ने कर दिया कि पति पुत्र ने कर दिया कि पत्नी माता बहन ने कर दिया, तो ये भी मनुष्य की साधना में एक बड़ी बाधा हो जाती है कि उसको परिवार और कुटुंबी बहुत अनुकूल मिल जाए और हर इच्छा उसकी पूर्ति करने में लोग प्रेम से स्नेह से सहज से कर दें। तो ऐसी ऐसी किसी की आदत बन गई है, अब उसके सामने प्रतिकूलता आ जाए तो इच्छाओं के साथ अपने को अभियोजित करने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती। और स्वामी जी महाराज ने तो आधुनिक मनोविज्ञान में बहुत आगे आने वाली बात को बहुत पहले कह दिया था। आधुनिक मनोविज्ञान वाले लोग अब समझ रहे हैं कि इच्छाओं की आपूर्ति से मनुष्य के मस्तिष्क की ताकत जैसे घट जाती है, ऐसे इच्छाओं की बहुत बार पूर्ति होने से भी ताकत घट जाती है। तो ये बात मनोविज्ञान वेत्ता अब कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा। तो चाहे आपूर्ति के कारण क्षोभ है, चाहे बहुत अधिक पूर्ति के कारण से मानसिक दुर्बलता आ गई है, तो जिसके जिसके मन में बहुत सी इच्छाओं ने होड़ जमा रखा है और जो असंतुष्ट है भीतर से, उसका भी साधना में मन नहीं लगता, किसी बात में मन नहीं लगता, कोई भी काम उसको दे दो तो वो जम करके बिल्कुल तन मन लगा के उसी काम के साथ रम जाए, ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। समझदारी से अपने को दबा करके संभाल लेना, अपने पर जोर डाल करके काम पूरा कर लेना, ये बात अलग है। और कुछ काम करने वाले ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल तन मन सब लगा करके उसी काम में रम जाते हैं, तो जिनकी मानसिक दशा संतुलित होती है, स्वाभाविक होती है, स्वस्थ होती है, वे तो ऐसा कर सकते हैं। और जिनके मस्तिष्क में भीतर भीतर अधिक असंतोष है, टेंशन है, तो उनसे नहीं होता है। तो अलग अलग शारीरिक दशाएं हैं, अलग अलग मानसिक दशाएं हैं, और सब लोग एक समान ध्यान भी नहीं लगा सकते, जप भी नहीं कर सकते, मामूली काम नहीं कर सकते, तो ये सब कैसे हो। तो बड़ा भीतर भीतर उन लोगों के यहाँ हलचल हलचल मची रहती थी, और एक को देख करके दूसरा एक प्रकार का रिमार्क पास कर रहा है, दूसरे को देख करके दूसरा कुछ और कह रहा है, अरे भाई इनकी तो क्या बात है, इनकी तो बन गई। कोई कह रहा है कि अरे भाई यहाँ भी आए तो क्या क्या करते रहते हैं, साधना करते नहीं है। तो केवल एक दूसरे पर दीनता और अभिमान के प्रभाव से प्रेरित हो करके अजीब अजीब तरह का व्यवहार करना देख करके मुझे बड़ा दुख होता था। स्वामी जी महाराज के पास आई ही थी मैं, देखती रहती थी सब। मानव सेवा संघ की पद्धति में स्वामी जी महाराज ने सत्संग से पहले साधन का कोई क्रम किसी को पकड़ाया नहीं, कभी नहीं। पहले सत्संग करो, सत्य के प्रकाश में जीवन को पहले अच्छी तरह से समझो, उसकी व्याख्या करो, उसका निरीक्षण करो, अपने जाने हुए असत्य के त्याग की बात करो, जीवन के सत्य को स्वीकार करने की बात करो। तो अधिक से अधिक महाराज जी ने हम लोगों की शक्ति और समय सत्संग में लगाया। बिना सत्संग के, बिना स्वीकृति को बदले किसी प्रकार की साधन पद्धति को पकड़ाया नहीं कि गुरु ने कह दिया है कि ऐसा करना, अब न करते बने न छोड़ते बने। बहुत लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, करना चाहते हैं तो होता भी नहीं है, और गुरु ने कह दिया है कि ऐसा करो तो छोड़ते भी नहीं बनता है, डर लगता है कि छोड़ कैसे दें, फिर क्या करेंगे। तो मानव सेवा संघ में साधकों को इस प्रकार के द्वंद में कभी नहीं डाला। आप लोग इतने भाई बहन यहाँ बैठे हैं जिन लोगों को इस पद्धति का परिचय है, कोई नहीं कह सकता है कि स्वामी जी ने सत्संग कराया हो ठीक है और साधना पकड़ा दी हो कि जाओ बेटा बैठ करके ऐसा ऐसा करो। कभी नहीं किया, करने को नहीं कहा। तो एक यह विशेषता है, इस पर जहाँ तक दृष्टि जाए अपनी, हम लोगों को इस संबंध में अपना दृष्टिकोण भी बहुत स्पष्ट रखना चाहिए और दूसरे साधकों के दृष्टिकोण को भी इतना स्पष्ट रहने देना चाहिए। अच्छा, उपवास करते नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, अब कोई निर्जला एकादशी कर ले और कोई न कर सके तो भाई जल पी के रह जाए, कोई उतने से भी ना बने तो दूध पी के रह जाए, किसी से उतने भी ना बने तो फलाहार भी कर लो। तो इन बातों में मानव सेवा संघ कभी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना को कुछ नहीं करता। भाई शारीरिक दशा है, शरीर धर्म है, जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। कभी कभी देखा गया है कि बहुत कमजोर और दुर्बल साधक भी संकल्प के बल पर बड़ा कठिन कठिन तप कर लेते हैं, ऐसा भी देखा है। अभी मैं अगस्त सितंबर महीने में राजस्थान में थी, जोधपुर में काफी थी। उन दिनों में जैन मत के हिसाब से कुछ विशेष दिन चल रहे थे, कुछ उनके त्याग तप का। तो किसी ने 6 दिन तक बिल्कुल निर्जल व्रत किया और किसी ने 21 दिन तक किया, किसी ने 1.25 महीने तक किया, किसी ने 3 महीने तक किया एकदम निर्जल व्रत, जल भी नहीं पीते हैं। और घरवारी महिलाएं, तो जिस घर में मैं ठहरी थी उस घर में जो बहू थी वो हर दूसरे तीसरे दिन शाम के समय बाहर निकलने को तैयार है, माता जी आज उसके यहाँ जाना है, जा रहे हैं, क्या बात है भाई। तो उसने 21 दिन का वो व्रत लिया है। तो आप जाकर क्या करेंगे, तो आसपास के सब जान पहचान के लोग आते हैं, उसके पास बैठ करके भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इसने इतना कठिन व्रत किया है, इतना कठिन तप किया है। तो ऐसा ऐसा भी चलता है, तो उसको मैं क्या कहूँ। तो शारीरिक बल पर भी काम होता है, संकल्प के बल पर भी काम होता है, लेकिन सबसे एक समान नहीं हो सकता है। बहुत दिनों के बाद एक महिला उसी घर में आई तो वो बहू हमको आके कहने लगी कि माता जी यही हैं जिनके घर मैं जाया करती थी मिलने के लिए, तो इन्होंने कितना 1.5 महीने का कि 3 महीने का कितना किया, 3 महीने का, 3 महीने से कुछ कम किया था। तो आई और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एकदम पसीने से परेशान हो गई, फिर जमीन पर लेट गई। हमने कहा कि क्या हो गया भाई, इनकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने उस समय व्रत जो किया था उसकी कमजोरी अभी गई नहीं है और अब घर में सेवा करने के लिए कोई है नहीं, सब लोग अपना अपना चले गए, तो बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, इनकी दुर्बलता लगती है, परेशान रहते हैं। ये सब भी मैंने देखा है। मानव सेवा संघ ने इस प्रकार की साधना का प्रतिपादन नहीं किया, कंपल्सरी नहीं बताया कि आपको करना चाहिए। शरीर धर्म है, शरीर के साथ निभेगा, और स्वधर्म है तो स्व के साथ निभेगा। तो स्वधर्म पर अमित महाराज ने ज्यादा जोर दिया, प्राप्त सामर्थ्य को दुर्बलों की सेवा में लगाना, ये शरीर धर्म की बात हो गई। शरीर से शरीरों की सेवा बनेगी। जो कुछ मिला हुआ है उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, तो निर्मम होना ये स्वधर्म की बात हो गई। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे जीवन को पूर्ण बना सके, दुख रहित जीवन की, चिर शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति करा सके, ऐसा इस जगत में कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अचाह होना उन्होंने स्वधर्म बताया। और सर्वसमर्थ प्रभु हम सभी के अपने हैं, अभी हैं, अपने में हैं, अतः उन्हीं के होकर रहना मुझे पसंद आया। तो प्रभु की शरणागति, प्रभु का आश्रय, हरि आश्रित होकर रहना, इसको स्वधर्म बताया। तो ज्यादा से ज्यादा जोर इस बात पर है कि हम लोग स्वधर्म और शरीर धर्म का पालन स्वेच्छा से करने के लिए तैयार होता है, इस पर ज्यादा जोर है। ऐसा नहीं है कि शरीर चलता भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, उसमें बर्दाश्त करने की ताकत भी नहीं है, और तो भी एक साधना ऐसी जबरदस्त आपके सिर पर बैठ गई कि मरे भी जाओ और किए भी जाओ और होता भी नहीं और परेशान भी रहो, तो ऐसी बात मानव प्रदर्शन में नहीं कही गई। आज एक सज्जन हमारे पास आए, विवाह शादी की बात चली, निमंत्रण की बात चली, तो उनके संबंधी को मैंने कहा कि अगर आप अपने संबंधी का हित चाहते हैं तो उनको ये सलाह दीजिए कि आश्रम वास का पूरा लाभ उठाएं, अर्थात विवाह संबंधी कार्यों में भाग लेना अनिवार्य न माने। मानव सेवा संघ केवल साधकों को सलाह देता है कि अगर आप सीमित मोह के संबंधों को तोड़कर परमात्मा के नाते असीम संबंध में, असीम परिवार में शामिल होकर के हृदय को विस्तृत करना चाहते हैं, लोभ मोह से मुक्त होना चाहते हैं, दीनता और अभिमान से मुक्त होना चाहते हैं, अपने पराये का भेद मिटाना चाहते हैं, तो ऐसा करिए। हम लोगों को सिखाया गया कि भाई अगर तुम मुक्ति का व्रत लेना चाहते हो तो बंधन का उत्सव देखना बंद कर दो। ललित भाई समझ में आ गया? अगर मुक्ति का व्रत लेना पसंद किया तुमने, पसंद तो करना चाहिए था बहुत जल्दी, अफसोस की बात है कि 60 वर्ष के ऊपर ही आ गए, अब क्या करें। तो अब भी सही, 60 वर्ष की उम्र के बाद ही सही, अगर मुक्ति का व्रत लेना है आपको तो बंधन के व्यवहारों को देखना, उसमें शामिल होना छोड़ दो। जरूरी है कि नहीं है? है जरूरी। तो मानव सेवा संघ अपने साधकों को ये नहीं कहता कि आपको विवाह शादी में भाग लेने के लिए हम नहीं जाने देंगे। समझी महाराज ने, इसको तो बहुत घटिया किस्म का साधन माना कि किसी के कहने से आप रुक जाएं, बहुत घटिया किस्म का साधन है। अगर हम ऊपर से दबाव डालें कि आश्रमवासी लोगों को, साधकों को जो मुक्ति के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, उनको गठबंधन देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं कह दूं कि नहीं जाना चाहिए तो कई साधक हैं जो रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा पसंद नहीं किया कि नहीं भाई मेरे कहने से नहीं, तुम्हारे भीतर में इच्छा रह गई तो हमारे कहने से रुक भी जाओगे तब भी तुम्हारा उतना विकास नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो बात क्या है? तो बात ये है कि जो जीवन का सत्य है, जो आपके विकास के लिए आवश्यक है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। आपका विकास कब होगा? जब स्वेच्छा से आप इस बात को पसंद करें कि हाँ ये मेरे लिए हितकारी बात है, इसको मुझे मानना चाहिए। तो जब आप उसको मानना पसंद करेंगे तब वो आपके लिए हितकारी होगा। तो सच्ची बात जो है आपके लिए जो हितकारी बातें हैं वो आपकी सेवा में निवेदन कर देना अपना काम है। अब कब समझ में आएगा, जब समझ में आवे तभी सही, अभी तो अभी सही और अभी नहीं तो कभी सही। और भी अवसर ऐसे आते हैं तो मान लो कि आप जाते हैं गृहस्थी के रीति रस्म में भाग लेने के लिए और बताते नहीं हैं, बताइए कोई बात नहीं, दूसरा 10 काम है उसमें एक ये भी शामिल कर लिया और हो आए कर आए, किसी ने जाना नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी को आपने बताया नहीं, तो भी अगर आपके भीतर ये राग रह गया है और किसी न किसी तरह से आप उसमें शामिल होना पसंद ही कर रहे हैं तो मानव प्रशासन शासन नहीं करता कि आप क्यों गए, आप क्यों शामिल हुए, उससे कोई फायदा नहीं होने का है। आपके भीतर से ही ये चीज उपजनी चाहिए कि भाई अब मुझे साधक होकर रहना है, अब मुझे जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति का पुरुषार्थ करना है, तो अब जिस स्वीकृति को अस्वीकार कर चुके, एक दिन था, एक क्षण ऐसा आया कि जब आपने अपने को गृहस्थ स्वीकार किया और एक क्षण जीवन में ऐसा आया कि जब आपने अपने को गृहस्थी की स्वीकृति को अस्वीकार किया, तो अस्वीकृति के बाद भी अगर उसी राग की पूर्ति करना है आपको तो दुनिया में कोई आपको राग रहित बना नहीं सकता। तो मानव सेवा संघ की एक यह विशेषता है कि हम जबरदस्ती नहीं करते, और नहीं तो जबरदस्ती करने से क्या होता है, शासन करने से क्या होता है कि बाहर बाहर से आदमी का व्यवहार तो नियंत्रित हो जाता है लेकिन भीतर से उसकी राग निवृत्ति नहीं होती। यहाँ तक कि मैं तो महाविद्यालय से आती थी स्वामी जी महाराज के पास, छात्रावास में रहती थी, सैकड़ों लड़कियों को लेकर के घंटी लगा के जगाना, घंटी लगा के सुलाना, घंटी पर भोजन, घंटी पर अध्ययन, इस तरह का एक क्रम था। तो महाराज जी के पास आ करके जब मैं देखती कि सत्संग के समय कोई कहीं पर सो रहा है तो हम धीरे धीरे महाराज जी से पूछते कि महाराज जी एक आदमी उधर सो रहा है, जगा दूं? तो कहते नहीं 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 नहीं, जगाओ मत जगाओ मत, सत्संग की अपेक्षा नींद उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम होती है तो उसको सोने दो, जगाने से कोई फायदा नहीं होगा, जगाने नहीं देते। जिसको नींद की अपेक्षा सत्संग अधिक महत्वपूर्ण मालूम हो तो उसको तो उस समय में नींद आएगी नहीं, अब घंटी भी बज रही है, लोग बाग सब आ भी रहे हैं, सभा हो रही है, बैठक हो रही है और आदमी कोई सो रहा है आराम से, जगाने नहीं देते थे। नहीं नहीं नहीं, कितने विधि विधान से साधकों के जीवन को सही क्रम पर चलाने का इंतजाम उन्होंने किया लेकिन कहीं पर किसी जगह पर जोर नहीं डाला। तो एक यह विशेषता है और महाराज जी ने इसको जाना, इसलिए उन्होंने ये नियम हम लोगों के सामने रखा। और इसमें दार्शनिक सत्य भी है। दार्शनिक सत्य क्या है कि हम लोगों का जो ये अहम रूपी अणु है जिसने सत्य को भी स्वीकार किया है और फिर असत्य से संबंध भी रखा है, तो चाहते तो ये है कि दुख रहित देहातीत अविनाशी जीवन के आनंदमय अस्तित्व का भी अनुभव हो जाए और परम प्रेमास्पद प्रभु के अलौकिक प्रेम रस को पा करके जन्म जन्मांतर के सदा सदा के लिए सब प्रकार की कृष्णा शांत हो जाए, अभाव मिट जाए, नीरसता मिट जाए और हम प्रेम स्वरूप होकर प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाए। मांग तो ये है और इस मांग को रख करके हम लोग साधक भी बनते हैं, सत्संग भी आरंभ करते हैं, साधन में भी लगते हैं और साथ साथ नाशवान शरीरों से भी जुटे रहते हैं, शरीर के संबंधियों से भी जुटे रहते हैं, तो ऐसी दशा में जो ये प्रारंभ की बात है, जैसी जैसी वर्तमान दशा अपने लोगों की है, उसमें से आगे निकलने के लिए यह प्रणाली बहुत अच्छी है कि अकेले में बैठकर आत्मनिरीक्षण करो। पहला नियम है निज विवेक के प्रकाश में आत्मनिरीक्षण करना, अपनी भूलों को देखना, और दूसरा नियम है की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेना। तो बिल्कुल आरंभ की बात है। तो कहा गया कि इस संसार में व्यक्तिगत अपना किसी का कुछ नहीं है, इसलिए किसी वस्तु को व्यक्तिगत मत मानो, तो ममता के नाश की सामर्थ्य आ जाएगी। और जो कुछ अपने को मिला हुआ है वही मुझे अविनाशी जीवन देने में असमर्थ है, वही मुझे रसरूप जीवन देने में असमर्थ है। तो जो मिला हुआ है वही मेरे काम का नहीं है, तो जो नहीं मिला है उसकी कल्पना क्यों करना, उसकी चाहना क्यों करना, उसकी कामना जीवन में क्यों रखना। ये हो गई विचार की बात। इस प्रकार से अध्ययन करके, जीवन को देखकर विचार करके, और फिर कामना रहित होने का प्रयास करो। तो अहम के परिवर्तन की बात महाराज जी ने पहले कही, और उन्होंने इसका जो स्वरूप बताया उसमें इतनी गुंजाइश है अपने को बदल डालने की कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी धारणाओं को बदल देता है, जीवन के मूल्यांकन को बदल देता है, लक्ष्य को बदल देता है, ठीक कर लेता है, क्या कर रहे थे अब क्या करना है, क्या मान रहे थे अब क्या मानना है, किसको हमने सत्य माना था वास्तविक बात क्या है, तो ये सब अपने द्वारा निश्चय कर लेने पर मन चित्त बुद्धि इंद्रियों सब में परिवर्तन आता ही है। मैं के स्वरूप के संबंध में संत समागम वाले ग्रंथ में कहीं पर ये बात लिखी हुई है, पृष्ठ संख्या इत्यादि मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। मिल बाजा का उदाहरण दिया है महाराज जी ने मनुष्य के अहम रूपी अणु को। क्या है भाई, कोई नहीं पहचानता है। बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर लोग बैठे हैं, उसमें एक आदमी एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी का टुकड़ा लेके बैठा है। सब लोग अपना अपना यंत्र बजा रहे हैं, तो वो भी अपनी लकड़ी पर हाथ फेर रहा है। पूछा गया कि भाई तुम्हारी इसका यंत्र का नाम क्या है, तो उसने कहा इसका नाम है मिल बाजा। तो इसमें स्वर कौन सा निकलता है, तो अपने अपना कुछ नहीं, सब सबके साथ मिल जाता है, और जिसका जैसा स्वर होगा तो इसका स्वर हो जाएगा। उदाहरण देने के लिए उन्होंने ये चीज ली और कहा कि हमारे अहम का भी यही हाल है। अगर उसे देह के साथ मिला दो तो देह के जितने लक्षण हैं सब उस पर घटित हो जाते हैं। अभी हम बलिष्ठ हैं, अब दुर्बल हो गए, अभी जी रहे हैं, अभी मर जाएंगे, अभी बहुत दुखी हैं, अभी बहुत सुखी हैं। तो शरीर के साथ उसको मिला दो तो शरीर के सब लक्षण उस पर आरोपित हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं, और आदमी उसी के अनुसार सुख दुख का भोग करने लग जाता है, और उसी के अनुसार सुख दुख अनुभव करने लग जाता है। और यदि ये इस बात को विवेक के प्रकाश में देख करके और अपनी ओर से असत के संग का त्याग करना, यदि ऐसा हमने कर लिया कि जीवन के सत्य को स्वीकार करना, उस स्वीकृति के आधार पर जीना आरंभ किया, तो सत्य की स्वीकृति के आधार पर उसी अहम में जो ये करता है कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े दुखी हैं, उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आपने संतों भक्तों महापुरुषों के जीवन में सुना होगा कि वे रोग बीमारी आपत्ति विपत्ति आक्रमण सबके सामने क्या कहते हैं, मेरा न कभी जन्म हुआ न मेरी कभी मृत्यु होगी। अब क्या हो गया, तो असत के संग के त्याग से, सत्य की स्वीकृति से, उसी अहम रूपी अणु में विद्यमान अलौकिक और अविनाशी तत्वों की अभिव्यक्ति हो जाती है, तो एकदम परिवर्तन हो जाता है। तो भय नहीं है, दुख नहीं है, शांति नहीं है, मृत्यु नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने मनुष्य के विकास के लिए सत्संग पर बहुत जोर डाला कि पहले सत्संग करो। सत्संग के आधार पर जब जब असत की स्वीकृति निकल जाएगी, जब सत की स्वीकृति तुम्हारा जीवन बन जाएगी, तब उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस एक विशेष बात को ध्यान में रखना। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि भाई दुनिया का कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसका सफल होना और विफल होना विशेष अर्थ नहीं रखता है। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन मनुष्य के जीवन के साथ जीवन दाता प्रभु का बनाया हुआ मंगलमय विधान इतना बढ़िया है कि जिस समय से आप सत्य के जिज्ञासु बनते हैं अथवा भगवान के विश्वासी बनते हैं, तो आस्था श्रद्धा का पंथ पकड़ो अथवा विचार का पंथ पकड़ो, किसी भी प्रकार से आपने सन्मार्ग पर चलना आरंभ किया तो कभी मत सोचना कि आखिर समय तक आप असफल रहेंगे। उस दिशा में असफलता नहीं होती है। जैसे जैसे विचार बदलता जाता है दोष मिटते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी जीवनी शक्ति आपके लक्ष्य के साथ जुट जाती है, सत्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सुन लिया, समझ लिया और साधन के क्रम में थोड़ा थोड़ा अनुभव भी कर लिया, सबसे बढ़िया बात क्या है हम लोगों के लिए कि इस दिशा में पुरुषार्थ करने वाले साधक के लिए बहुत ही आशाजनक बात यह है कि जहाँ साधक अपनी ओर से ऐसा अनुभव करता है कि क्या बताएं, इन विकारों का नाश करना तो मेरे लिए बहुत कठिन हो गया, मैं काम क्रोध लोभ मोह को रखना नहीं चाहता हूँ, मेरे प्रयास से ये मुझमें से निकलते नहीं है, तो जहाँ आप अपनी असमर्थता से अधीर होते हैं वहीं पर करुणामय की करुणा का दरवाजा खुल जाता है। स्वामी जी महाराज का अपना अनुभव था और उन्होंने मानव जीवन के मंगलमय विधान में इस बात की बहुत अच्छी चर्चा की। समय समय पर हम साधकों को बड़ा ही आश्वासन दिया ये कहकर के कि डरने की घबराने की बात नहीं है, अपनी ओर से तुम बुराई करो मत, और की हुई बुराई के परिणाम का नाश करने में अगर असमर्थ हो जाओगे तो डरने की कोई बात नहीं है, एक सामर्थ्यवान तुम्हारा रक्षक है, सहायक है, और तुम उसे बुलाओ चाहे मत बुलाओ, लेकिन जहाँ तुम हारते हुए अनुभव करोगे वहाँ वो आकर के तुम्हें संभाल लेगा और तुम्हें पार लगा लेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, हार होगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज के युग के ईश्वर विश्वासी महात्मा गांधी ने भी लिखा है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए आखिरी दम तक कोई गलत रास्ते नहीं गया। सप्त महाव्रत कथा लिखा था उन्होंने, नमक कर आंदोलन में जब जेल में थे तब 1929-31 के बीच में, तो उसमें यह वाक्य लिखा है, उसी समय का मेरा पढ़ा हुआ याद रहता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए अंतिम समय तक कोई गलत रास्ते नहीं गया। क्यों? क्योंकि जिस सत्य की आराधना में आप लगे हैं वो आप ही में विद्यमान है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, आपको देख रहा है। बस अंतर कितना है कि आपको पसंद क्या है। अगर निर्विकार होना पसंद है, किसी भी प्रकार से विकार युक्त दशा को आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो विकारों को मिटाने की सामर्थ्य आप में है कि नहीं है, ये इमेटेरियल बात है। कुछ इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी अपने पर नहीं है, कोई है हमको संभालने वाला, तो आप जितना कर सकते हैं पूरी शक्ति लगा डालिए। और जहाँ आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो असमर्थता की वेदना में आवश्यकता की पूर्ति स्वतः होती है। असमर्थता की वेदना में करुणामय की करुणा का दरवाजा खुलता है। अर्थात जहाँ जा करके हम रुक जाते हैं वहाँ आकर के वे मिल लेते हैं। अनेक प्रकार से इसकी अभिव्यक्ति की गई है और अनुभवी जनों ने इस सत्य को जाना है। इस आधार पर वर्तमान अपने सरीखे अपने सभी आत्मीय भाई बहनों से मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि जीवन के सत्य को सामने रखकर खूब आशा और विश्वास के साथ आप अपने पुरुषार्थ में लगे रहिए। जितनी शक्ति आपके पास बची खुची है, ज्यादा तो खर्ची हो गई है इधर उधर में, इसके लिए तो कम ही बची है, लेकिन कुछ परवाह नहीं। जितनी बची हुई शक्ति है उसको इस दिशा में लगाइए और जहाँ आपके पास घट जाएगी वहाँ अनंत सामर्थ्यवान हमारे साथ हैं। ये शक्ति भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे, प्रकाश भी देंगे, चलने की राह भी बताएंगे और समय समय पर अब ऐसा मैंने अनुभव किया है कि हाथ पकड़ के चला भी देते हैं, पार भी करा देते हैं, तो पथ भी देते हैं, पाठे भी देते हैं, मंदिर तक पहुँचा भी देते हैं। ऐसा होता है, इसलिए खूब निश्चिंतता से, निर्भयता से, आशा और विश्वास के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। और शांत हो जाए।